ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि उनकी आकांक्षाएं राष्ट्र की प्रगति को गति दे रही हैं। कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग को अधिक धन देकर सशक्त बनाने के सरकार के फैसले का उल्लेख किया।
25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति, हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार के विकास का मॉडल राष्ट्र प्रथम है, जो तुष्टिकरण की बजाय संतुष्टिकरण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस मॉडल की जांच की है, समझा है तथा समर्थन किया है और इसीलिए सरकार को तीसरी बार जनादेश प्रदान किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मॉडल कांग्रेस की समझ से परे है, क्योंकि पूरी पार्टी ही केवल एक परिवार के लिए समर्पित है। उन्होंने देश में आपातकाल लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की उपलब्धियों, भारत से विश्व की उम्मीदों, देश की आम जनता के आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प का विस्तृत ब्यौरा था। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया और कई विपक्षी सांसदों के संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की आज घोषणा करेगा। लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद की जा रही है। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की। वे आज 6 सदस्यीय पैनल के निर्णय की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक ने पिछली बार मई 2020 में रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर उसे 4% कर दिया था, ताकि कोविड महामारी और उसके बाद लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संकट से उबारा जा सके। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कल घोषणा करते हुए कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों का निपटारा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष संगठन ने 4,45,00,000 दावों का निपटारा किया था। डॉ. मांडविया ने कहा है कि दावों के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाकर और शिकायतों की संख्या कम करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह सफलता प्राप्त की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारी पूरी हो गई है। दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी आर.एल.एस. वाज ने बताया कि 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनावी दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान चुनाव आयोग के केंद्र प्रेक्षक, उम्मीदवार और उनके एजेंट तथा चुनाव अधिकारी उपस्थित थे। सीईओ वाज ने कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार ने कोई शिकायत नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम को आयोग और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। भारत ने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के आवास को उपद्रवियों द्वारा नष्ट किए जाने की कड़ी निंदा की है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान आक्रमणकारी और अत्याचारी ताकतों के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो लोग बांग्ला पहचान और गौरव को पोषित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम को महत्व देते हैं, वे बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए इस निवास के महत्व से अवगत हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि इस बर्बरतापूर्ण कृत्य की निंदा की जानी चाहिए। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में देश के 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये नए कानून पिछले वर्ष 1 जुलाई से देश में लागू किए गए थे और ये भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव था। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आज शाम चीन के हार्बिन में शुरू होंगे और इस महीने की 14 तारीख तक चलेंगे। उद्घाटन समारोह में एशिया के 34 देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि परेड में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।